ॐ शांति, ॐ शांति। परमात्मा की महिमा अपरम्पार है। कितनी महिमा है उसकी गिनती नहीं है, लेकिन परमात्मा के साथ साथ और भी कई हैं जिनकी महिमा अपरम्पार है, जो परमात्मा से संबंधित है। क्या क्या बातें परमात्मा से संबंधित है? परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो जहां आते हैं भारत में, तो भारत की महिमा भी अपरम्पार है। और फिर जो ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान की भी महिमा अपरम्पार है। किस नाम से? गीता, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद् गीता। तो उस ज्ञान की महिमा भी अपरम्पार है। फिर जहां आते हैं भारत में, जब आते हैं तो संगम युग पर आते हैं, तो संगम की भी महिमा अपरम्पार है। फिर बाबा कहते हैं मैं आकर के ज्ञान गंगाएं पैदा करता हूं, तो भक्ति मार्ग में फिर उन नदियों की महिमा है। पर है सब ज्ञान गंगाएं जिनकी महिमा अपरम्पार है, क्योंकि भगवान उनको ज्ञान गंगा बनाते हैं। फिर और वही ज्ञान गंगाएं कौन है? शिव शक्तियां। तो शिव शक्तियों की भी महिमा अपरम्पार है। चल रही है ना नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि चल रही है। तो बाबा कहते हैं जब बाबा आते हैं तो कितनों की महिमा अपरम्पार हो जाती। जो रचते हैं स्वर्ग, तो स्वर्ग की महिमा भी अपरम्पार है। कितना याद करते हैं सब स्वर्ग को। तो शिव बाबा के साथ साथ भारत, स्वर्ग, देवियां, शक्तियां, नदियां, ज्ञान, समय, संगम, इन सब की महिमा अपरम्पार है। तो आज की बाबा की मुरली इसी पर है। बाबा ने भारत की कितनी महिमा की है आप सोचो। आज सुनते जाओ लगेगा कि सचमुच हम भारतवासी कितने भाग्यशाली है जो यहाँ हमने जन्म लिया है। हमारे कई डबल विदेशी भाई बहने कहते हमने भारत में क्यों नहीं जन्म लिया। तो भारत की महिमा तो अपरम्पार है ही। और फिर बाबा कहते भारत ही बचेगा, भारत ही होगा, बाकी सब खंड खत्म हो जाएंगे, यहाँ तक भी बाबा कहते हैं। तो आज बाबा ने इन सब की महिमा गाई है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। और दूसरा, हमेशा बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, परंतु मैं जानी जाननहार नहीं हूँ। यानी एक एक के मन में क्या चल रहा है वो मैं नहीं जानता हूँ। और कई बार कहते बाबा मैं क्यों जानूं, मुझे क्या पड़ी है, पता है इस समय सब पतित है, इस समय सबके मन में अशुद्ध विकारी संकल्प ही है, तो वो बैठ के मैं क्यों देखूंगा या सुनूंगा या विचार करूंगा। इसलिए अंतर्यामी भी जो कई समझ है, अंतर में सब कुछ जानने वाला, बाबा कहते मैं नहीं जानता हूं, मैं ज्ञान का सागर हूं। लेकिन फिर बाबा ये भी कहते हैं कि मैं कई अव्यक्त बाबा के मूल्यों में आते ना, बाबा टीवी पर देखते रहते हैं हर एक के मन की स्थिति, इसलिए ये भी नहीं हम समझे बाबा को तो कुछ पता ही नहीं है। सब पता है, क्योंकि अंत में तो साक्षात्कार तो होगा ही ना सबका, सबकी सबका हिसाब किताब तो चुकतु होना ही है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं सोचो भगवान को तो कुछ पता ही नहीं चलता है। भक्ति मार्ग में तो यहाँ तक कहते भगवान सब देख रहा है, अब उसको क्या पड़ी है देखने की, एक एक ही। हर एक को अपने कर्म है, जिन कर्मों के आधार से उनका भाग्य बनता है, जिन कर्मों के आधार से उनको वैसा ही फल मिलता है। इसलिए भगवान को जानने की जरूरत नहीं है, हर एक खुद को देखे मैं क्या कर रहा हूँ। आज पहली अप्रैल है, 1 अप्रैल 2025। मीठे बच्चे, बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जानी जाननहार कहना ये उल्टी महिमा है। तो बाप आते ही हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने, मुख्य कर्तव्य यही है भगवान का, पतित से पावन बनाना। बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जानी जाननहार कहना ये उल्टी महिमा है। बाप आते ही हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने। प्रश्न है, बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? किसकी है और कैसे सबसे अधिक महिमा बाप के साथ साथ? उत्तर है, बाप के साथ साथ भारत की महिमा भी बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही स्वर्ग बनता है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। नशा चढ़ता है भारतवासियों को। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। दूसरा, गीता की भी अपरम अपार महिमा है। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता है। और तीसरा, तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। है हम ज्ञान गंगाओं की महिमा, लेकिन भक्ति मार्ग में वो नदियों की महिमा बता दी है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो, हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा ऊंच ते ऊंच है और बहुत प्यारे ते प्यारा है सभी का। ऊंच ते ऊंच है और सभी का बहुत प्यारे ते प्यारा है। प्यारे ते प्यारा कौन? माशूक है। प्यारे ते प्यारा तो कई संबंध है, लेकिन सबसे प्यारा तो माशूक है। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का रास तो समझाया है। ज्ञान माना दिन सत्युग त्रेता, भक्ति माना रात द्वापर और कलयुग। भारत की ही बात है। पहले पहले तुम भारतवासी आते हो, 84 का चक्र भी तुम भारतवासियों के लिए है। भारत ही अविनाशी खंड है। कितनी महिमा है भारत की। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है, और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता है, केवल भारत खंड ही स्वर्ग बनता है। बच्चों को समझाया गया है, नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है, भारत ही स्वर्ग कहलाता है। भारतवासी ही फिर 84 जन्म लेते हैं और क्या बन जाते हैं? 84 जन्म लेकर नरकवासी बन जाते हैं, वही फिर स्वर्गवासी बनेंगे। इस समय सभी नरकवासी हैं, फिर भी और सभी खंड विनाश हो, बाकी भारत रहेगा। भगवान उवाच, क्या? और सभी खंड विनाश हो, बाकी भारत रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरम अपार है। भारत में ही बाप आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। तो पुरुषोत्तम संगम युग की भी कितनी महिमा है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वो आदि सनातन देवी देवता धर्म भी नहीं है, राज्य भी नहीं है, और वो युग भी नहीं है। न आदि सनातन देवी देवता धर्म है अभी, न वो राज्य है, न वो युग है सतयुग। तुम बच्चे जानते हो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक भगवान को ही कहा जाता है। भारतवासी ये बहुत भूल करते हैं। अब वो बात पूरी हुई इस महिमा की। अब दूसरी बात, भारतवासी ये बहुत भूल करते हैं जो कहते हैं वो अंतर्यामी है। महिमा अपरम अपार जरूर है, लेकिन ये भूल करते हैं जो कहते हैं अंतर्यामी है। सभी के अंदर को जानते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई के भी अंदर को नहीं जानता हूं। कई बार कहते ना मुझे क्या पड़ी अंदर को जाने की, पता है क्या है। कई कहते ना किसी के लिए भी कहेंगे फला आपको पता है फलाने के बारे में, क्या जरूरत है जानने की, वो तो है ही ऐसा, है ना, क्योंकि जानते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मैं क्या जानू, क्या मुझे पड़ी है सबके अंदर को जानने की। बाप कहते हैं मैं कोई के भी अंदर को नहीं जानता हूं, मेरा तो काम ही एक है। सबसे बड़ा काम भगवान का कौन सा है, पतितों को पावन बनाना। अब इसमें सब कुछ आ जाता है, क्या क्या करते हैं भगवान, सबसे पहला काम यही पतित से पावन बनाने का करते हैं। और क्या कहा, देखो यज्ञ शुरू हुआ, यही सबसे पहले सबसे प्रतिज्ञा करवाई। कौन सी प्रतिज्ञा, पवित्र बनेंगे योगी बनेंगे। बस पवित्र बनना योगी बनना, ये पहली प्रतिज्ञा बाबा ने बच्चों से करवाई। तो पवित्र और योगी, मुझे याद करो और पावन बनो, बस यही भगवान मेन कार्य के लिए आते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना। बहुत कहते हैं शिव बाबा आप तो अंतर्यामी हो। बाबा कहते हैं मैं हूं ही नहीं अंतर्यामी, मैं किसको भी किसके भी दिल को नहीं जानता हूं, मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूं। लेकिन कई इसका उल्टा एडवांटेज लेते हैं, बाबा को क्या पता, बाबा को क्या पता। हाँ लौकिक में भी होता है ना, बच्चे क्या क्या करते हैं, ये मेरे माँ बाप को नहीं पता। लेकिन पता तो पड़ ही जाता है, समझ तो लेते हैं, से पुरानी, पुरानी से नई कब होती है, पुरानी को नया बनाता है। लेकिन पुरानी होती कब है, फिर नई होती कब है, बाबा कहते मनुष्य नहीं जानते। हर चीज नई से पुरानी तो होती है, सतो रजो तमो में जरूर आती है। प्रकृति की ऐसी कोई चीज नहीं है जो सतो रजो तमो से न गुजरे, हर चीज सतो रजो तमो से गुजरती है। मनुष्य भी ऐसे होते हैं, बालक सतो प्रधान है, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, अर्थात फिर रजो और तमो में आते हैं। युवा हुए तो रजो हुए, वृद्ध हुए तो तमो हुए, तो फिर वृद्ध होते हैं तो अर्थात रजो और तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है तो वो फिर छोड़कर फिर बच्चा बनेगा, ये भी एक साइकिल है। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। फिर चलो भारत की महिमा सुनो, भारत कितना ऊंच था नई दुनिया में। भारत की महिमा अपरम अपार है, इतना सुखी धनवान पवित्र और कोई खंड है ही नहीं, है ही नहीं और कोई खंड। इतना धनवान, इतना पवित्र, इतना सुखी और कोई खंड है ही नहीं। फिर सतो प्रधान बनाने बाप आए हैं। सतो प्रधान दुनिया की स्थापना हो रही है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? किसने किया? हाँ, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचा, किसने रचा? ऊंच से ऊंच भगवान शिव ने। कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, अर्थ तो समझते नहीं है, चार मुख दिखाते हैं ब्रह्मा के, तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, अर्थ तो समझते नहीं है। वास्तव में क्या कहना चाहिए? त्रिमूर्ति ब्रह्मा ने, तो कौन त्रिमूर्ति? कौन त्रिमूर्ति है? शिव बाबा। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, न कि ब्रह्मा। अब गाते हैं, अब और राज गाते हैं, देव देव महादेव। चलो त्रिमूर्ति कहना भी है तो शिव है त्रिमूर्ति, ब्रह्मा नहीं है। और फिर दूसरी बात, गाते हैं देव देव महादेव, शंकर को महादेव कहते हैं। अब शंकर को ऊंच रखते हैं, शंकर को ऊंच रखा है ना, देव देव महादेव, तो देव हो गया ब्रह्मा, देव हो गया विष्णु, फिर शंकर महादेव, तो त्रिमूर्ति शंकर कहे ना, क्योंकि तीनों में जो ऊंच है वो शंकर है, महादेव है, बाकी दो तो देव बताते हैं, तो त्रिमूर्ति फिर शंकर को कहना चाहिए, वास्तव में ब्रह्मा को कह देते हैं। पर सचमुच देखा जाए तीनों में से ऊंचा कौन, कौन किसको कहेंगे? ब्रह्मा विष्णु शंकर में से तीनों में से ऊंचा कौन? ब्रह्मा। रचयिता का ही महत्व होता है, रचयिता का ही महत्व होता है, इसीलिए बाबा कहते हैं तीनों में भी ब्रह्मा ऊंचा है। तो बाबा कहते हैं देव देव महादेव, शंकर को ऊंच रखते हैं तो त्रिमूर्ति शंकर कहे ना, फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? शिव है रचयिता, गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापन करते हैं। किसको किसको रचते हैं ब्रह्मा द्वारा? सबसे पहले ब्राह्मणों को, क्योंकि यज्ञ रचना है भगवान को, तो पहले तो ब्राह्मणों को रचेंगे, तब तो वो यज्ञ संभालेंगे। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं ब्राह्मणों को। भक्ति मार्ग में नॉलेजफुल बाप को जानी जानन हार कहते हैं। अब ये महिमा अर्थ सहित नहीं है, जानी जानन हार भी हो गया, सबको जानने वाला, सबके अंदर को जानने वाला, ये भी अर्थ सहित नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप द्वारा हमें वर्षा मिलता है, वो खुद हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। तो बाप रूप में जन्म देकर वर्षा देते हैं, फिर टीचर बनकर पढ़ाते हैं, तो वो खुद हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वो बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है वो समझाते हैं, तो वो नॉलेजफुल है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जानी जाननहार है, बाबा ने साफ मना किया, जानी जाननहार मैं नहीं हूँ, ये भूल है। मैं तो सिर्फ आकर के पतितों को पावन बनाता हूँ, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, हाँ, जिसको बाबा कहते हैं सन्यासी हठ योगी जानते ही नहीं है। सच्चा सुख क्या होता है वो तो हठ योगी सन्यासी जानते ही नहीं है। ये जो कलयुग का थोड़ा बहुत सुख है इतना भी क्या समझते, कहते ये तो कागविष्ठा समान है, यहाँ तो सुख है ही नहीं, है ही नहीं दुनिया में सुख। तो बाबा कहते हैं वो जानते ही नहीं है कि सच्चा सुख क्या होता है। तो बाबा कहते हैं हाँ, भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी हठ योग जानते ही नहीं है। सुख को सचमुच वो मानते ही नहीं ना, समझते सुख है ही नहीं, ब्रह्म को ही याद करते हैं। अब ब्रह्म तो भगवान नहीं है, भगवान तो एक निराकार शिव है जो सर्व आत्माओं का बाप है। हम आत्माओं के रहने का स्थान ब्रह्मांड स्वीट होम है, वहां से हम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती है। तो उन्होंने क्या समझ लिया, घर को ही भगवान मान लिया, ब्रह्म तो महतत्व है, वो भगवान तो नहीं है, वो घर है ना भगवान के रहने का, लेकिन रहने के स्थान को ही भगवान मान लिया। तो बाबा कहते हैं वहां से हम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती है, तो आत्मा कहती है यहाँ पाठ बजाने आती आत्मा तो क्या कहती है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरा तीसरा लेती हूँ, एक शरीर छोड़ फिर दूसरा फिर तीसरा हाँ लेती हूँ, ये आत्मा कहती है। 84 जन्म भी भारतवासियों के ही है, जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। ये भगवान ने अपनी रचना का राज बताया है, जो बहुत भक्ति करते हैं वही सबसे जास्ती ज्ञान भी लेंगे और वही फिर सबसे पहले सतयुग में आएंगे, वही टोटल 84 जन्म लेंगे। तो जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। तो बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में भल रहो, बाबा मना तो करते नहीं, परंतु श्रीमत पर चलो, ये जरूर कहते हैं। ग्रस्त व्यवहार में भल रहो परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सभी आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशूक की, भक्ति मार्ग से लेकर तुम याद करते आए हो। आत्मा बाप को याद करती है, क्यों याद करती है, हाँ सुख शांति के लिए। तो आत्मा बाप को याद करती है, ये है ही दुख धाम, हम आत्माएं असुल शांति धाम की निवासी है। पीछे आए सुख धाम में फिर हमने 84 जन्म लिए, असल में हम वहीं के रहवासी थे, फिर वहां से आए सुख धाम में फिर 84 जन्म लिए। हम सो हम का अर्थ भी समझाया है, वो तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब बाप ने समझाया इसका अर्थ क्या है, हम सो हम का अर्थ हम सो देवता क्षत्रिय वैश्य सो शूद्र, अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं सो देवता बनने के लिए, ये है सच्चा अर्थ हम सो हम का। ये है यथार्थ अर्थ, वो है बिल्कुल रॉन्ग। वो कौन सा अर्थ बताते हम सो हम सो आत्मा सो परमात्मा, बाबा कहते ये एकदम अयथार्थ इसका अर्थ है, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। सतयुग में एक देवी देवता धर्म है, जिसको क्या कहेंगे, देवी देवता धर्म एक ही धर्म है, उसको क्या कहेंगे, अद्वैत धर्म। वहां कोई द्वैत था ही नहीं, दूसरा धर्म था ही नहीं, जो ताली बजे आवाज हो लड़ाई हो, एक देवी देवता धर्म अद्वैत धर्म था। पीछे और धर्म हुए हैं तो द्वैत हुआ है, द्वापुर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। सतयुग में रावण राज्य ही नहीं तो क्या क्या नहीं, रावण राज्य ही नहीं, रावण ही नहीं तो रावण का राज्य ही नहीं तो और क्या क्या नहीं, और पांच विकार भी नहीं हो सकते, पांच विकार भी नहीं, दुख भी नहीं, अशांति भी नहीं, लड़ाई झगड़े भी नहीं, क्योंकि रावण ही नहीं है, वो है ही संपूर्ण निर्विकारी। अभी तुम हो, अभी हम क्या है, सभी गॉडली स्टूडेंट्स, ईश्वरीय विद्यार्थी हैं हम, तो ये टीचर भी हुआ फादर भी हुआ, फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते हैं, तो फिर क्या हुआ, सतगुरु भी हुआ। तो बाप टीचर गुरु तीनों ही हो गया, उनके तुम बच्चे बने हो, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते देखो अपने अंदर इतनी खुशी है जितनी बाबा चाहते हैं बच्चों में खुशी हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, रावण राज्य है ना, हर वर्ष रावण को जलाते आते हैं, परंतु रावण है कौन ये नहीं जानते। अब हम तो जान गए हैं ना कौन है रावण, तो बाबा कहते तुम बच्चे अब जान गए हो रावण को, क्या जान गए हो, ये रावण क्या है, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये रावण कौन है, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन। ये नॉलेज तुम बच्चों को ही नॉलेज से तुम बादल भरकर फिर जाए वर्षा बरसाते हो,
ज्ञान गंगाई तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। जो भी नदियां दिखाते हो तो पहाड़ों से ही आई है, पहाड़ों से ही नदी निकली है, फिर वो पहाड़ों पर जल कहां से आया, अब वो सारा बरसात से आया, तो बरसात से आया पर बरसात कैसे बनी, सागर से ही पानी लिया बादलों ने। बाबा कहते हैं तुम ज्ञान गंगाई हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ, ये एक जन्म पवित्र बनो, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान हो जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, जितना हो सके याद को बढ़ाओ, अंडरलाइन, जितना हो सके याद को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना भी नहीं,
शिव बाबा कहते रहो नहीं तो कैसे याद करो शिव बाबा को, जैसे आशिक माशू को एक दो को याद करते हैं। जो उसका माशू क्या उसको उसका कोई नाम नहीं रटती है आशिक, वो तो बस हर घड़ी हर कर्म करते हर कदम पर उसको याद करती है। बाबा कहते हैं जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, एक बार देखा बस फिर बुद्धि में उनकी ही याद रहती है। भक्ति मार्ग में जो जिस देवता को याद करते जिसकी पूजा करते उसका फिर साक्षात्कार हो जाता है। हाँ, जिसके भक्त है वो फिर उसका साक्षात्कार हो जाता है, वो है अल्प काल के लिए। भक्ति करते नीचे उतरते आए हैं, अब तो नीचे उतरते आए अभी क्या हो गया है, कहाँ तक पहुँचे अब तक, अब तो मौत सामने खड़ा है। इतना नीचे चले गए हाँ मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होनी है। भारत में ही हाय हाहाकार होगा ना, तो हाय हाय कार होगा तो हाय हाय कार कैसे होगा। भारत में रक्त की नदियां बहनी है, भारत का भविष्य क्या है, पहले रक्त की नदियां, ये है भारत का भविष्य जिसको सिविल वॉर कहते हैं। यहाँ पर खून की नदियां बहेगी, यहाँ पर एटम बॉम्ब नहीं गिरेगा। एटम बॉम्ब में तो खून की नदियां नहीं बहती है, एटम बॉम्ब लगा आग लगी खत्म सब नष्ट सब जल गए। लेकिन जहाँ रक्त की नदियां बहेगी वो तो सिविल वॉर होता है, एक दो को मार काटते मारेंगे काटेंगे बंदूकें चलेगी क्या क्या होगा। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो सिविल वॉर है। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदी बहनी है, सिविल वॉर के आसार भी दिखाई दे रहे हैं, है ना, गृह युद्ध अंदर ही अंदर, देश के अंदर ही गृह युद्ध, तो सिविल वॉर के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। तमो प्रधान बन गए हैं, अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो। जो कल्प पहले देवता बने हैं वही आकर बाप से वर्षा लेंगे। कौन लेंगे बाप से वर्षा? जो कल्प पहले देवता बने हैं वही अब बाप से वर्षा लेंगे। कम भक्ति की होगी तो ज्ञान भी थोड़ा उठाएंगे, पता चल जाएगा किसने कम भक्ति की है, वो ज्ञान कम उठाएंगे तो जन्म भी कम होंगे उनके। तो भक्ति भी कम की ज्ञान भी कम तो जन्म भी कम, बहुत ज्ञान उठा रहे माना बहुत भक्ति भी की है तो बहुत जन्म भी लिए। कम भक्ति की होगी तो ज्ञान थोड़ा उठाएंगे, फिर प्रजा में भी नंबरवार पद पाएंगे। ऊंच पद तो नहीं पाएंगे ना, ऊंच पद तो वही पाएंगे जिन्होंने बहुत भक्ति की है, जिन्होंने बहुत ज्ञान उठाया है, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर प्रजा में भी नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। हम क्या मुख से बोल रहे हैं, हाँ बाबा कहते हैं उस पर बहुत निर्भर होता है। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं, वो फिर 21 जन्म चलेंगे। हमारे मैनर्स, हमारे अंदर दैवी गुण और यही जो हम धारण करते हैं वो 21 जन्म चलेंगे। अभी है सब के आसुरी गुण, आसुरी दुनिया पतित दुनिया है ना, तो तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई है। इस समय बाप कहते हैं याद करने की मेहनत करो, तो क्या होगा, याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे, पतित से पावन बन जाएंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे, खाद निकल जाएगी और तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना, फिर त्रेता में चांदी की एलॉय पड़ती है, कला कम होती जाती है, अभी तो कोई कला नहीं है। जब ऐसी हालत हो जाती है, कैसी, जब कोई कला न रहे, जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाप आते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है, तब कोई कहे बाबा पहले क्यों नहीं आते, सारे कलाहीन हो जाते फिर भगवान आते। हाँ, पहले थोड़ा आ जाए तो सब कलाहीन न भी हो, लेकिन बाबा कहते ये भी ड्रामा में नोंद है, मेरा पार्ट ही उस समय है, तो क्यों, बाबा कहते प्रश्न उठ ही नहीं सकता, ड्रामा में ऐसे ही नोंद है। तब बाप आते हैं, ये भी ड्रामा में नोंद है। इस रावण राज्य में सभी अभी बाबा कहते बेसमझ बन गए हैं, बेसमझ बन गए हैं। जो अभी बाबा ने बेसमझ किसको कहते हैं, जो बेहद ड्रामा के पाठधारी होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अब कोई एक्टर हो किसी ड्रामा का और उस ड्रामा की क्या है कहानी उसको पता ही नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, बेसमझ ही कहेंगे ना। तो जो बेहद ड्रामा के पाठधारी होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, परंतु पाठधारी होकर जानते नहीं है, ड्रामा कोई नहीं जानते, कहानी कोई नहीं जानते हैं। तो बाबा कहते हैं पाठधारी होकर जानते नहीं, तो बेहद का बाप कहेंगे ना तुम कितने बेसमझ बन गए हो। अब कोई एक्टर हो उसको कहो कि उससे पूछो तुम जिस फिल्म में या ड्रामा में एक्टिंग कर रहे हो उसकी कहानी क्या है, ओके मुझे पता ही नहीं है, तो उसको बाबा कहते क्या कहेंगे, बेसमझ कहेंगे ना। तो बेहद का बाप कहेंगे ना तुम कितने बेसमझ बन गए हो, अब मैं तुम्हें समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ। फिर रावण कौड़ी जैसा बना देता है, मैं हीरे जैसा बनाता हूँ, रावण कौड़ी जैसा बना देता है। मैं ही आकर सबको साथ ले जाता हूँ, फिर ये पतित दुनिया भी विनाश होती है, मच्छरों सदृश सबको ले जाता हूँ। कैसे ले जाता है भगवान सबको, एक एक करके नहीं लेके जाता है, मच्छरों सदृश अनगिनत जितनी भी संख्या है दुनिया में सबको मच्छरों सदृश ले जाता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सब सामने खड़ी है, ऐसा तुमको बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो तुम स्वर्गवासी बनेंगे, इन जैसा यहाँ बनेंगे तब तो तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये पुरुषार्थ कर रहे हो, इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। मनुष्यों की बुद्धि तो तमो प्रधान है, इसीलिए बाबा कहते हैं समझते ही नहीं है, उनको कहो ना हमको ऐसा बनना है, तो कहेंगे ऐसे कैसे बन सकते हैं, हम तो इनके दास है, सेवक है, ये है। हाँ यही कहेंगे ना, हम तो इनकी भक्ति करते, हम थोड़ी ये बन सकते हैं। तो बाबा कहते तमो प्रधान बुद्धि है उनकी, जो समझते ही नहीं है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां है तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा ना, अभी ब्रह्मा है, फिर अभी ब्रह्मा के बच्चे फिर विष्णु के बच्चे बनेंगे, बनेंगे ना भविष्य में, तो विष्णु कौन, वही लक्ष्मी नारायण, तो यही बनेंगे। तो बाबा कहते इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा, हम सब कहलाते ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, तो किसके बच्चे इतने सारे, ब्रह्मा है, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। तो ब्राह्मण है चोटी, फिर ब्राह्मण देवता बनते हैं, हाँ देवता फिर क्षत्रिय बनते हैं, फिर वैश्य शूद्र बनते हैं। तो चित्रों में ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया है। विराट रूप में ब्राह्मण दिखाए नहीं है, बस केवल देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाए, ब्राह्मण नहीं दिखाए, न शिव बाबा दिखाया है। तो बाबा कहते हैं चित्रों में ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया है। तुम ब्राह्मण अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो। नशा चढ़ता है ना, हम ब्राह्मण भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, भारत खास और दुनिया आम। अच्छा अच्छा, फिर मम्मा की दो मुरलियां हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। के लिए मुख्य सार, पहला, ऊंच पद के लिए श्री मत पर चल, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। ऊंच पद के लिए श्री मत पर चल, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। दूसरा, सच्चा आशिक बन एक माशूक को ही याद करना है। सच्चा आशिक बन एक माशूक को ही याद करना है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। ये मुख्य हमारा पुरुषार्थ है, याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। वरदान, निमित्त पन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। मैं निमित्त हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ नहीं, मैं निमित्त हूँ। तो निमित्त पन की स्मृति से क्या होगा, माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं, उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। मैं तो निमित्त हूँ, कराने वाला बाबा है, तो इसीलिए वो हल्का होगा। तो जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं, उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। करण करावन हार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ, इसी स्मृति से सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात मैं करता हूँ, ये मैंपन आया माना, मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला। मैं पहला मैं, फिर वो माया का गेट खुला, तो फिर मेरा, तो माया का दूसरा गेट खुला, ऐसे गेट खुलते हैं। तो मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला, निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते हैं और क्या हो जाता है, और डबल लाइट भी बन जाते हैं, साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है, क्योंकि बाबा साथ है। मैं तो निमित्त हूँ, बाबा करा रहा है, तो बाबा भी याद रहेगा, तो सफलता भी मिलेगी, तो साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर वन लेने का आधार बन जाती है। स्लोगन, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करने का मतलब, हाँ, पहले सोचो फिर समझो इसका नतीजा क्या होगा, अगर अच्छा होगा तो करो, तब कहेंगे त्रिकालदर्शी स्थिति। मातेश्वरी जी के महावाक्य, तो इसमें दो मुरलियां हैं विशेष मातेश्वरी जी की, मम्मा की। पहली मुरली का सार है, मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। जितनी कमाई करेगा अभी, उसी अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। देखो, बहुत बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं कि हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात है ही नहीं। पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म से ये हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, मम्मा कहती है ऐसी बात है ही नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है ये तो हम जानते हैं, ये जरूर है, पूर्व जन्म का अभी जो मिला वो अच्छा फल है। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। प्रारब्ध का आधार है पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है, तब तो वहाँ सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दास दासी, कोई प्रजा पद पाते हैं। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है, जो यहाँ पुरुषार्थ किया उस अनुसार भविष्य में पद मिलेगा। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है, वहाँ द्वैत ईर्ष्या आदि होती नहीं, वहाँ प्रजा भी सुखी है। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं, कैसे संभाल करते हैं, जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। हाँ, द्वापर कलयुग में भी ऐसा ही था, राजा कैसे रात को निकलता था, कपड़े बदल करके, किसको पता ही नहीं चले ये राजा है, और कैसे देखता था अपनी प्रजा को, भाई सब सुखी है। तो सतयुग त्रेता में तो राजा ही तो होगा जो सब प्रजा की संभाल करता है। तो बाबा कहते हैं, तो मम्मा कहती है, राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। वहाँ गरीब साहूकार सब संतुष्ट है सतयुग में। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे, ये है अविनाशी कमाई। जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। अभी हम सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं, ये प्रैक्टिकल खेल चल रहा है, यहाँ कोई छू मंत्र की बात नहीं है, छू मंत्र हो और सतयुग आ जाए ऐसे नहीं, पुरुषार्थ है, प्रैक्टिकल जीवन है। तो अभी हम सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं, ये प्रैक्टिकल खेल चल रहा है, यहाँ कोई छू मंत्र की बात नहीं है। छोटी सी मुरली, फिर दूसरी मुरली है मामा की, गुरु मत शास्त्रों की मत कोई परमात्मा की मत नहीं है, गुरु मत शास्त्रों की मत कोई परमात्मा की मत नहीं है। अब कैसे वो मत परमात्मा की नहीं है वो मामा ने बताया। परमात्मा कहते हैं बच्चे, ये गुरु मत शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं है, ये तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ, मेरी मत क्या है वो मैं जानता हूँ, मेरे मिलन का पता मैं आकर देता हूँ, कैसे तुम मेरे से मिल सकते हो वो भी मैं आके बताता हूँ, उसके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। गीता में बल भगवानोवाच है, परंतु गीता भी तो मनुष्यों ने बनाई है, भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है, भगवान ने जो महावाक्य सुनाए हैं उनका यादगार फिर गीता बनी है। ये विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं, हम बोलो क्या कहते हैं, कि परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए, उसे सीखने बगैर परमात्मा मिल नहीं सकेगा, अगर परमात्मा से मिलना है तो संस्कृत सीखनी पड़ेगी, उसके बिना परमात्मा नहीं मिलेगा। चलो अनुवाद होते रहते हैं लेकिन संस्कृत सीखनी पड़ेगी। तो मम्मा कहती है ये तो और ही, परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए हैं, उसे सीखने बगैर परमात्मा मिल नहीं सकेगा, ये वो कहते हैं। अब ये तो और ही उल्टा कर्म कांड में फंसाते हैं साधु सन्यासी, क्या उल्टा बाबा, तो मम्मा कहते कर्म कांड में फंसाते हैं। वेद शास्त्र पर अगर सीढ़ी चढ़ जावे तो फिर उतना ही उतरना पड़े, उनको भुलाए एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े, इतने सारे वेद शास्त्र चलो इतने पढ़ लेंगे लेंगे और उसे चढ़ेंगे तो फिर परमात्मा कहते तो देव तो मामा कहती है तो फिर उतना ही उतरना पड़ेगा अर्थात उनको भुलाए एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े क्योंकि भगवान ने तो यही कहा कि मैं इनसे नहीं मिलता हूँ तो अगर यही पढ़ने से चढ़ते हैं तो फिर तो अगर भगवान जब आएंगे तो फिर सब कुछ भूलना पड़ेगा तो मामा कहती है फिर उतना ही उतरना पड़े अर्थात उनको भुलाए एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े क्योंकि परमात्मा साफ कहता है कि इन कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। गीता के अंदर ये है मेरी प्राप्ति मेरे द्वारा ही होती है। देखो ध्रुव पहला प्रहलाद मीरा ने क्या शास्त्र पढ़े मीराबाई ने क्या शास्त्र पढ़े फिर भी देखो कितने भजन अच्छे गाती थी। ध्रुव भी भगत दिखाते ध्रुव भगत प्रहलाद भगत तो इन्होंने क्या शास्त्र पढ़े तो देखो ध्रुव प्रहलाद मीरा ने क्या शास्त्र पढ़े यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता है पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता है जिसको इंग्लिश में बहुत सुंदर शब्द देते हैं जो वॉट एवर यू हैव लर्न यू हैव टू अनलर्न भूलना माना है ऐसे नहीं याद भूल गई लेकिन उसको सब भुलाना पड़ेगा वो सब सोचना भी नहीं है जो कुछ भी पढ़ा है। देखो ध्रुव यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता है जैसे अर्जुन तो बहुत पढ़ा हुआ था कितने शास्त्र पढ़े वो इसलिए इतने प्रश्न करता गया गीता में है क्या प्रश्न उत्तर ही तो है तो प्रश्न ही प्रश्न कर रहा है फिर भगवान उसका उत्तर देते हैं तो जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा भगवान ने उनको कहा तुम सब भूलो तुमने जो कुछ भी पढ़ा अपना आपको बहुत विद्वान समझ रहे हो अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। भगवान के साफ महावाक्य है श्वासो श्वास मुझे याद करो उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और श्वासो श्वास याद करो तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब तक ये ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्म कांड सब छूट जाते हैं क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फायदा क्या मिला आज कर्म कांड के पीछे ही समय गया उसमें भगवान से तो दूर चलेगी वो कर्म कांड में ही बुद्धि फंसी रहे तो फिर शरीर छूट जाए तो फायदा क्या मिला प्रारब्ध तो बनी नहीं कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं। लोग तो समझते हैं झूठ न बोलना चोरी न करना किसी को दुख न देना ये अच्छे कर्म है अच्छे कर्म तो है लेकिन मामा कहती है कि परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधायमानी से छूटना है और विकर्मों की जड़ को निकालना है मुख्य बात तो यही है ना। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डाले जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले इसलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। अच्छा ओम शांति अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड अब ये नया महीना शुरू हो रहा है तो अव्यक्त इशारे का महीने भर का ये हेडिंग है कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड शिव और शक्ति कंबाइंड बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति तो जो कंबाइंड है उसके कोई अलग नहीं कर सकता जो मिले हुए जुड़े हुए हैं उनको अलग नहीं कर सकता। यही याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए बाबा के साथ हम जुड़े हुए हैं इसीलिए हम उसके अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे अभी साथ रहने वाले हैं ये नशा सदा रहे। अच्छा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे आज से डबल विदेशी भाई बहनों का भी कोई प्रोग्राम नहीं है अभी तो लगभग सब जा चुके हैं, थोड़े बहुत हैं जो एक दो दिन में जाने वाले हैं। ओम शांति। डबल फॉरेनर्स प्लीज।